नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। ये भवन सेंट्रल विस्टा के व्यापक परिवर्तन का हिस्सा है। यह आगामी साझा केंद्रीय सचिवालय भवनों में से पहला भवन है। श्री मोदी शाम को वहां एक सभा को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और शासन को और अधिक सक्षम बनाना है।
कर्तव्य भवन 3 लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर का एक अत्याधुनिक कार्यालय परिसर है, जिसमें गृह, विदेश, ग्रामीण विकास, एमएसएमई, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसे प्रमुख मंत्रालयों, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय होंगे। यह नया भवन आधुनिक प्रशासनिक ढांचे का प्रतीक है। रूफटॉप सोलर, सोलर वाटर हीटिंग, वेंटिलेशन और वातानुकूलित व्यवस्था और वर्षा जल संचयन के साथ यह स्थायित्व में भी अग्रणी होगा। कर्तव्य भवन की छत पर लगे सोलर पैनल हर साल 5 लाख से अधिक यूनिट बिजली पैदा करेंगे। यह भवन पर्यावरण जागरूकता को भी बढ़ावा देगी। रईसुद्दीन के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने आज रेपो दर को 5.5% पर यथावत बनाए रखने का फैसला किया। इसके साथ ही स्थायी जमा सुविधा दर 5.25% और सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर 5.75% रहेगी। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति 3.1% रहने का अनुमान है। मौद्रिक नीति समिति की बैठक 4 से 6 अगस्त के बीच हुई। इस बीच सभी सेक्टरों में बिकवाली के बीच घरेलू शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 194 अंक गिरकर 80,517 पर और निफ्टी 89 अंक गिरकर 24,561 पर था। संसद में विपक्षी सदस्यों के विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान में 1945 में 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। सदन की ओर से श्री बिरला ने विश्व को जन विनाश के हथियारों से मुक्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
इस घटना ने पहली बार विश्व को परमाणु बम के विनाशकारी दुष्प्रभावों से अवगत कराया था। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन तथा वैश्विक शांति और स्वाद सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लेती है।
सदन ने जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में मौन भी रखा। सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन के पूर्व सदस्य सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि दी गई। प्रवर्तन निदेशालय वैश्विक साइबर धोखाधड़ी मामले में दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और देहरादून में 11 स्थानों पर आज छापे मार रहा है। निदेशालय के अनुसार जालसाजी करने वालों ने पुलिस जांच अधिकारी और तकनीकी सहायता सेवा एजेंट बनकर विदेशी और भारतीय नागरिकों को ठगा। पीड़ितों को गिरफ्तारी के नाम पर धमकाया गया और उनसे जबरन पैसे वसूलकर उन्हें क्रिप्टो करेंसी में बदला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर उत्तरकाशी जिले के धराली में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। श्री धामी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि प्रधानमंत्री को रात भर चले बचाव कार्यों की जानकारी दी गई। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के दौरान उत्तराखंड में तेज वर्षा जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज तेज वर्षा होने की संभावना है। चेन्नई में आज शतरंज की चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स प्रतियोगिता शुरू होगी। इस प्रतियोगिता में 2 राउंड रॉबिन समूह शामिल हैं, जिन्हें मास्टर्स और चैलेंजर्स के रूप में 2 वर्गों में बांटा गया है। इस बीच चैलेंजर वर्ग में सभी भारतीय खिलाड़ी भाग लेंगे। उनमें महिलाओं में हारिका द्रोणावल्ली और वैशाली रमेश बाबू के मुकाबले शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।